نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خود کو کامیاب کروانے کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے میری ٹرین چھوٹ گئی. کتنے لوگ ہیں جو یہ جملہ اکثر بولتے ہیں؟ یا آپ اپنے آپ سے پوچھئے مجھے کتنی دفعہ یہ جملہ بولنا پڑا، اوخو پلین مس ہو گیا، ٹرین چھوٹ گئی، بس ہاتھ سے چلی گئی، ابھی سامنے ہی تھی تو بس چلی گئی. کئی دفعہ کامیابی بالکل ہمارے قریب ہوتی ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی غفلت، کیئرلیسنیس اور اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینا، اس کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا، ہر کسی کے لیے کامیابی اپنے بازو نہیں کھول سکتی، ہر کسی کے لیے خوابوں کو زندگی دینا ممکن نہیں. یعنی بعض لوگ اس طرح سے نیگیٹیولی سوچتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ سب کامیاب ہوں، تو پھر میں بھی انہیں ایک میں سے ایک ہوں کہ جو کامیاب نہیں ہوں گے. میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا ان سے متفق ہونے میں، وہ صحیح ہی تو کہتے ہیں، ہر کوئی بھلا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے، ہر کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ہاں مگر سر اٹھا کے جینا تو صرف ان خاص لوگوں کا کام ہے جو کچھ کر دکھانے والے ہوتے ہیں. خود سے پوچھئے، کیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں؟ سر اٹھا کے جینے والے لوگ آج میں جو کچھ کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا. یہ بھی لکھئے، جن لوگوں نے آج کام کیا ہے وہ کل ضرور سر اٹھا کے جئیں گے. یعنی جب آپ اپنے آج کی قدر پہچانیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے لیے کامیابی کے راستے خود بخود کھولیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہیں کل میں وہ کچھ ملتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. کیا پتا چلا؟ کہ جو اپنے آج کی قدر کر لیں گے وہ کل ضرور وہ پا لیں گے جو دوسروں کو نہیں ملے گا. سر اٹھا کے جینے والے لوگ میری آپ کی طرح کے گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سر اٹھا کے جینے کا راز پا لیا ہوتا ہے. راز کیا ہے؟ راز بڑا ہی سادہ ہے، آپ خود سے سوچئے. یہ کوئی سیکرٹ ہے؟ ٹاپ سیکرٹ، کسی کو نہ بتانا، کوئی نہ پوچھے. میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، نہیں. کامیاب ہونے کا راز تین چیزوں میں چھپا ہوا ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا تو لکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد بس اس راز کو کھول کر اپنی زندگی میں کامیابیوں کا فیصلہ کیجئے. نمبر ایک، پہلا راز، طے کرنا کہ زندگی سے مجھے کیا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک آج بیٹھ کے یہاں سوچے، 5 سیکنڈ تک ٹائم لے، لکھے، جو میری عمر ہے اس وقت، اس سے لے کرنے تک مجھے کیا کرنا ہے. لکھئے جو بھی دل کی بات ہے، جو بننا چاہتے ہیں، جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، لکھ لیں. کسی کو آئیڈیل کیا ہوا ہے کہ ہائے فلاں کتنا خوش قسمت ہے، وہی لکھ لیں. ٹھیک ہے، لکھنا پڑے گا. پھر دوسری چیز، تعین کرنا کہ اس چاہت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی پہلی چیز کیا کرنا ہے، دوسری چیز قیمت کیا دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاہتوں کی قیمت نہ ہو. آج دیکھیں دنیا میں جب لوگ گھومنے جاتے ہیں اور شاپنگ بیگز بھر بھر کے لاتے ہیں، تو وہ اپنی چاہتوں ہی کی تو قیمت دیتے ہیں ٹل پہ کھڑے ہو کر. کیش رجسٹر میں چیزوں کی قیمت نہیں جاری ہوتی، ان کی چاہتوں کی جاتی ہے. کوئی چیز فری نہیں ہے اس دنیا میں، تو کامیابی کیسے فری ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو سب پتہ چل گیا کہ قیمت تو ہوگی، دینی پڑے گی. تیسرا سوال یہ ہے کہ قیمت پھر چکا بھی دیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے قیمت دینی ہے، لیکن چکا نہیں پاتے. اور قیمت چکانی، اور وہ بھی ایڈوانس میں، کامیابی خریدنے کے لیے بعد میں نہیں پہلے قیمت دینی پڑتی ہے. دنیا میں شاپنگ کے آج بہت مختلف انداز ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بائے ناؤ پے لیٹر، بعض کہتے ہیں 3 ماہ تک فری ہے، بعد میں یہ وہ دس اینڈ دیٹ. لیکن کامیابی کے لیے قیمت پہلے دینی پڑتی ہے، پوری دینی پڑتی ہے. جتنا بڑا مقصد ہے آپ کی زندگی کا، اتنا بڑا آپ کو کرنا پڑے گا. چلیے اب راز تو کھل گیا آپ کے اوپر، تو پھر یہ راز جان لینے کے بعد بھی لوگ سر اٹھا کے جینے میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک کوئسچن ہے۔ یہ باتیں کو پہلی دفعہ تھوڑی ہم کر رہے ہیں، بیسیوں بار کہی سنی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر پاتے؟ کئی بار خود سے ارادے کیے ٹوٹ گئے، خواب دیکھے چکنا چور ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ساری زندگی یہ طے ہی نہیں کر پاتی کہ انہیں چاہیے کیا، زندگی سے ان کی کیا آرزوئیں وابستہ ہیں، یعنی پہلی سیڑھی سے سلپ۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، اتنے مطمئن، اتنے مسرور اپنی زندگی جو جی رہے ہیں، بڑے خوش ہیں جی، سب کچھ کیا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں۔ میں وہ ٹون نہیں استعمال کرنا چاہتی جو اس وقت میرے ذہن میں ہے۔ میں کسی سے پوچھ رہی تھی، ایسی بات ہوئی، سنائیں کیا، شکر ہے جی سب ٹھیک چل رہا، بہت اچھا کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پن سورہ پڑھتی ہوں۔ تو میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی، میں نے کہا مجھے بھی اللہ کبھی اتنا یقین دے دینا کہ واقعی جو تم نے کر لیا یہ کافی ہے، اب تمہیں اور کچھ نہیں ضرورت۔ تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرنا کیا ہے، اگر وہ طے کر بھی لیں تو کبھی درست اندازہ نہیں لگا پاتے کہ زندگی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ دیکھیں، صبح جلدی اٹھنا بھی تو قیمت چکانا ہے نا، گرمی سردی کا مقابلہ کرنا بھی قیمت چکانا ہے، ذاتی زندگی کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر اجتماعی ضروریات کو نبھانا، یہ بھی تو قیمت ہے نا۔ ہر قیمت جو ہوتی ہے نا، روپے پیسے میں نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں شاپنگ کے بہانے، کہتے ہیں منی دے دیں، کیش بھی لے لیں گے، کریڈٹ بھی لے لیں گے، پے پال سے بھی لے لیں گے، ہے تو پیچھے سب میں منی نا، لیکن کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ مان لگے، جذبے، اسٹیٹس، سستی، پلانز، تفریحات، خواہشات، دل دماغ کچھ اور، گھر کے کام، ہر ایک اپنا گول سوچے۔ کتنا چھوٹا گول لگتا ہے نا کہ میں نے آج اپنا گھر صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے، ٹھیک ہے ایک عورت عام ہوگی تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا گول ہے، لیکن کل شام تک گھر پھر گندا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آج شام تک ہی ہو جائے، لیکن دل گندا ہو یا روح گندی ہو یا انسان اس وقت میں کچھ اور اس سے بڑا کام کر سکے، اور صرف اس کام کے لیے پیچھے ہونا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو کوئی توپ دے کہ جاؤ اسے دشمن مارو اور وہ اس سے مچھر کرے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے مچھر مارنے کا کام لے رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بڑے دشمنوں کو مار سکتے ہیں۔ آپ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے نا، جیسے ایک ہفتہ 10 دن پہلے تھے۔ جب بھی میں ٹریولنگ کے بعد آتی ہوں نا، تو میرے ذہن میں بہت ہلچل ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ کہہ لیں یا نہیں، لیکن جو سب سے زیادہ چیز میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں وہ ضرورت، اور میں ہر دن یہ کہتی ہوں ضرورت کتنی ہے، ہر اسٹیشن پہ جا کر یہی خواہش، یہی تمنا، یہی ریکویسٹ، ہمیں ادھر ضرورت ہے، ادھر کچھ کریں، کوئی کام شروع ہو جائے، کوئی کر لے کچھ بھی، یعنی اتنی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو میری۔ اور میں اپنے گھر کے حرام کو دیکھوں، کھانا آج کیا پکے گا، آج کیا پہنوں گی، رات شادی میں جانا ہے، اتنی چھوٹی یہ باتیں لگتی ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ جینین بھی بات کرے تو ہنسی آتی ہے۔ تو کیا پتا چلا، کامیابی کے لیے شرط کے پہلے اپنا گول بنائیں، پہنچنا کا ہے، پھر اس کی قیمت دیں، درست اندازہ لگائیں، زندگی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی، کیا سیکھنا پڑے گا، کیا سہنا پڑے گا، کیا پڑھنا پڑے گا، کیا دیکھنا پڑے گا، کیا کھونا پڑے گا، کون سی صلاحیتیں، کون سی مہارتیں اور کون سی اہلیتیں خود میں پیدا کرنی ہوں گی، یہ آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا۔ کوئی نہیں آتی، ایک سکل تو لینی پڑے گی، تبھی تو میں کامیاب ہوں گی، شاید وہی میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ کون سی سوچیں، کون سے خیالات، کون سے سوالات، کون سے رویے، کون سے جذبے، کون سے طرز عمل کے زاویے اختیار کرنے ہوں گے۔ یہ آخری بات بھی بہت اہم ہے۔ بعض دفعہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے انسانیت کے اندھیرے دور کرنے ہیں، الحمدللہ، قیمت دینی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، پڑھیں گے، یاد کریں گے، پھر ٹریننگ لیں گے، وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، वो हमारी सोचें। ये जो हमारा ट्रिप था, ख़ास तौर पे फ्रांस से शुरू हुआ था, जब पहले नहीं, फ्रांस से लेकर बर्लिन, ये दो आखिरी जो कंट्रीज थे। आप लोग भी इसके जब कभी सुनेंगे तो हमने इसमें एक सीरीज रिकवर की है, बाथनी बीमारियां और उनकी असलाह, तकब्बुर, गुस्सा, रियाकारी, बुखल, फिर इसी तरह, यानी 6-7 टॉपिक किए हैं। और हर टॉपिक के बाद जो मैंने लोगों को देखा, ये एक कीना था सुभानअल्लाह, जहां भी वो मैंने किया, मैंने जो उसके बाद अपने सामने आके दोस्तों को रोते देखा, फूट फूट के कई सिस्टर्स आके रोई कि हमने तो इतना कुछ पाला हुआ। कीना क्या होता है? ऐसे किसी से बैर रख लेना, और वो कौन सा दिल है जो आज कीनों से खाली नहीं है? भाई बहन से रिश्ता नहीं लिया कीना, देवरानी जिठानी से कीना, यानी हर बंदा ऐसे लगता है कि अपने बोझ उठा के बैठा हुआ। ऐसे खूबसूरत वो टॉपिक चला है ना, हर जगह जहां किया अमेजिंग रिस्पॉन्स, और जिधर के वो कहते हैं आपको किसने बताया, हमें तो अपनी कम्युनिटी में इसी की जरूरत है। काम करने वालों में कीना, कराने वालों में कीना, दो वालों से कीने बुगज, अल्लाह के बंदो ये दिल है या ट्रैश कैन? सारे शहर का गंद तुमने अपने दिल में ही डालना है, निकाल के फेंको, फिर तुम देखो कितनी खैर देता है। लफ्ज़ में नेगेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। कुछ लोगों की चॉइस इतनी गंदी होती है कि उन्होंने अपने अमालनामे में गीबत, चुगली, बोहतान ही फेंकना होता है, घंटों बर्बाद कर देते हैं अपने सिर्फ इस नेगेटिव सोच की वजह से कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सोच बदलनी पड़ेगी मुझे और आपको। और अगर इन्हें ये सब भी पता चल जाए तो इस भारी भरकम कीमत का सुनकर वैसे ही बहुत सों के होश उड़ जाते हैं। वो तो पहले स्टेप पे कहते हैं सॉरी, नो नो नो, वी कैन डू दिस, इट्स इम्पॉसिबल। कीमत को चुकाने का ख्याल ही लोगों को हिला के रख देता है। ऊपर से जब ये पता चलता है कि कीमत है भी एडवांस में अदा करने की, तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। लोग कहते नहीं बाद में पे करेंगे, पे लेटर, फिर छोड़ दो अब नहीं हमने करना। लोगों को पे करना बहुत मुश्किल लगता है, अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर सकते वो और क्या करेंगे। लेकिन जब ये पता चले कि पूरे कोर्स की फीस पहले पे कर दो, कौन से कोर्स की, कामयाब होने के, तो लोग कहते नहीं हमसे नहीं होता। लोग सर उठा के जीने की आरजू को अपने आराम सुकून पर कुर्बान कर देते हैं और कहते हैं यार कौन इतनी जहमत उठाए, बस यही ठीक है, ज्यादा पैसे कमा के हमने क्या करना है। दौलत की हवस अच्छी चीज नहीं होती, अमीर होके कहीं ईमान से हाथ ना धो बैठे, हम जैसों के लिए यही जिंदगी बेहतर है। अब देखिए ये मिसाल है ना एक दुनियादार सोच के साथ, लेकिन मैं इसको आपके जैसों के लिए पढ़ती हूँ कि लोग सर उठा के जीने की आरजू को अपने आराम सुकून पर कुर्बान करते हैं, यानी आराम नहीं छोड़ते, वो नहीं कुर्बान करना, सुकून नहीं जिंदगी का, रूटीन ना टूटे, चलो छोड़ो कामयाबी छोड़ो, और क्या कहते हैं अरे दोस्त छोड़ो बस इतना काफी है, नमाज रोजा तो करते हैं ना, शिर्क का पता चल गया, बिदतें छूट गई हैं, और कोई जरूरी है हम जन्नतुल फिरदौस लें? कोई बात नहीं, हम जन्नत के शुरू के दर्जों में बैठ जाएंगे, इतना ही बहुत है। कम पे राजी हैं किस चीज की? जन्नत की। कहते खैर है, जरूरी कि 100 में से 100 ले। एक दफा ऐसे किसी की बात मेरे कानों में पड़ रही है कि उन्होंने कहा अरे भाई कोई जरूरी है हर पर्चे में पास हो, पूरे नंबर ना ले। वो खुद भी टीचर थे तो उन्होंने मिसाल क्या दी कि कोई बात नहीं, अगर दीन इस्लाम की कोई बात ना भी की तो कोई बात नहीं, कोई 100 बटा 100 नंबर सारे थोड़ी लेते हैं। और बात हो रही थी नमाज की, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपको पता है कि पेपर्स में कंपलसरी क्वेश्चन भी होता है, सारे दूसरे कर लें और कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ दें आपके स्टूडेंट तो क्या? तो कहा फेल। तो मैंने कहा नमाज वो कंपलसरी क्वेश्चन है। लेकिन लोग आराम तलब होते हैं, मैंने जो फील किया ना, सबसे बड़ी रुकावट हमारी कामयाबी और आगे बढ़ने में हमारी आराम तलबी होती है, रूटीन नहीं छोड़ सकते। हाय अभी तो सेट हुए थे, अब उठना पड़ेगा, हाय अभी तो सारा कुछ मुतमईन हुआ है, सब सही किया, नहीं मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ सकती। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश से भागे हुए इश्तिहारी लोगों से मेरी अक्सर किसी ट्रेनिंग, सेमिनार या टीवी शो में मुलाकात हो ही जाती है। इन्हीं में से एक शख्स को जब मैंने झंझोड़ने की कोशिश की तो वो बड़ी बेतनाई से बोला, बड़ी बेतनाई से मेरा ये कि जस्ट लाइक केयरलेसली, बस जनाब मेरी तो ट्रेन छूट गई है। ये जुमला मैंने पहली बार नहीं सुना था, खुद आपके लिए भी ये अल्फाज नए नहीं होंगे, और वो क्या, मेरी ट्रेन छूट गई है। इसका मतलब क्या है, मैंने इन साहब से पूछा। मतलब साफ है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब जिंदगी बनाने का वक्त था, मैं अपने बड़े भाई के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। ना पढ़ सका ना कोई ढंग का काम सीखा, अगर काम सीखा भी तो भाई साहब की वजह से इसको पूरा वक्त ना दिया। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं। सच ये है कि मुझे काम करने की आदत कभी पड़ी ही नहीं, बस जिंदगी चलती रही, गुजारा होता रहा। यानी अब कोई गोल ही नहीं आगे बढ़ने का, कि अब तो जिंदगी गुजर गई, अब और भी गुजर जाएगी। घर कैसे चलता है, मैंने फिक्रमंदी से पूछा। जवाब सुन लीजिए, बस अल्लाह चला रहा है, उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया। आप इस सब को बदलना नहीं चाहते, ये इनका सवाल है। ट्रेन छूट गई है तो फिर क्या, ये कोई दुनिया की आखिरी ट्रेन थोड़ी थी। देखिए, एक ट्रेन छूटती है तो हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कब है। क्या आपकी कभी ट्रेन छूटी है? क्या हम सब कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी शोबे में अपनी ट्रेन छूट जाने के तजुर्बे से नहीं गुजरे? ट्रेन छूट जाना है क्या? ट्रेन छूट जाने से मेरी मुराद क्या है? अब ये मुराद लिख लीजिए। नंबर एक, मौके का हाथ से निकल जाना। आप सूरह बकरा से ज्वाइन नहीं कर सके, मौका निकल गया, आल इमरान का मौका नहीं आ गया। आप सूरह बकरा पे अपनी दोस्तों को नहीं बुला सकी, शुरू में आपको खुद भी नहीं पता था ये कुरान क्या है, तो आप जोर लगा लीजिए। आप सूरह आल इमरान के शुरू में अपनी दोस्तों को बुलाइए, हाथ जोड़िए, प्यार से, मोहब्बत से, दर्द से हाथ पकड़ कर ले, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से पीछे रह जाना। बस जब हम पीछे रहते हैं ना, तो हम पीछे रह ही जाते हैं। आपके नहीं, मैंने आगे आना है। इसी तरह हाथ आई दौलत का रूठ जाना, खुशहाली का लौट जाना, खुशकिस्मती का पलट जाना, तवक्कुआत का पूरा ना होना, उम्मीदों का टूट जाना, यकीनी कामयाबी का शिकस्त में बदल जाना, आरजुओं का दम तोड़ जाना। अब देखिए, इनमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमें से सबके साथ होता है। हमें पूरी उम्मीद होती है ये काम हो जाएगा, आखिरी लम्हे पे नहीं होता, और आप बिल्कुल मायूस होते हैं, कोई नहीं होना, तो हो जाता है ना। इसी तरह सफर कर आए गां चले जाना। आप कोई सोच लेकर गए घर से, मैं फलां चीज ले आऊं, घूम फिर के आगे वो चीज मिली नहीं, अब आप कहते हैं कि ये तो काम हुआ ही नहीं। मेरी ट्रेन छूट गई है का मतलब, अगर आपके नजदीक भी ये है कि आप मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इन साहेब की तरह आपको भी मुस्तकबिल अंधेरी कोठरी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता होगा। क्या आप भी मायूसी की दलदल में फंस चुके हैं? ट्रेन छूटने की शिकायत करने वाले लोगों की नफ्सियात क्या कहती है? इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इनकी खुद कलामियां क्या इरशाद फरमा रही होती हैं? ट्रेन छूट जाने के बाद इनके तासुरात क्या होते हैं? इनकी कभी न रोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयानात जारी किए जा रहे होते हैं? यानी जब कोई नाकाम हो जाता है, उसका मौका चला जाता है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये जुमले सुन लें, वो लोग चीख चीख के ये कह रहे होते हैं कि मैं ट्रेन छूटने का जिम्मेदार नहीं हूं। यही कहते हैं ना। शौहर कहेगा तुमने देर कराई, बीवी कहेगी तुमने देर कराई, वो कहेगा ट्रैफिक बहुत था, वो कहता है जी हड़ताल हो गई, सो बातें। हिम्मत टूट जाती है ना कामयाबी ना मिले तो। जिंदगी बनाने की कोशिश करना अहमकाना ख्याल है। बंदा कहता है छोड़ो, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, अब अपनी जिंदगी को जाया करें। मायूसी मेरा मुकद्दर है, ये भी एक जुमला होता है। अब कोई कदम उठाने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह कुछ कहते हैं, मुझे हक हासिल है कि कुछ ना करूं, बस क्योंकि मुझे कभी मिला ही कुछ नहीं। फिर इसी तरह कुछ कहते हैं, मेरी जिंदगी किसी और ने जी ली है, यानी जिंदगी मेरी है, जी कोई और है। कोई कहता है मेरी नाकामी का मलबा किसी और के सर पर है। कोई कहता है जमाने ने मेरे खिलाफ साजिश की है। कोई कहता है मुझे प्लानिंग के तहत कामयाबी से दूर रखा गया। सुनते हैं कभी ऐसे जुमले? बहुत बहादुर लोग होते हैं जो अपनी नाकामी का जिम्मा खुद को लें। वो कहते हैं नहीं, इनकी आदत है, बस ये किसी को आगे जाने नहीं देते, अब इनसे कौन आगे निकले। इस तरह की बातें। मैं कसूरवार नहीं हूं, और सबसे बढ़ के मजे की बात पता क्या है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ट्रेन ने खुद मेरे साथ ज्यादती की है। कैसे? वक्त पे आके, उसको नहीं पता मैं लेट आता हूं तो रुक जाता थोड़ी देर, है ना ऐसी बातें। क्या मुसीबत है इस ट्रेन को हर वक्त वक्त पे आने की। हर बंदे को हम मुजरिम करार देते हैं सिवाय अपने। ट्रेन के छूट जाने का मतलब है कि अब मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं, कोई दर नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई इम्कान नहीं। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, यहां से टस से मस नहीं होगा। जो जिंदगी में जीना चाहता था, इस तक जाने का अब कोई इम्कान नहीं। मैं यही ठीक हूं, मुझे ना छेड़ो। मैं सर उठा के जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मायूसी की अथाह गहराइयों में गिरे हुए, फंसे हुए, धसे हुए, सख्त जान लोगों को कामयाबियों की बुलंदी पर ले जाना, इन्हें सर उठा के जीने की तरगीब, हौसला और तरबियत देना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए मैं इनकी सारी वजाहतों और बहानों के बावजूद इनके अंदर के इस इंसान से रब्त जोड़ने की कोशिश में आखिरी हद तक जाता हूँ। जो कामयाबी चाहता है, सर उठा के जीना चाहता है। इसीलिए अभी तक आपकी जुम्मे की छुट्टी अप्रूव नहीं हुई। आप सोचते जुम्मे की छुट्टी मिल गई, बस आपके हस्बैंड्स ने आपको सर्टिफिकेट देना है, एक्सीलेंट वाइफ, बच्चों ने देना है एक्सीलेंट मॉम, और मुझे पता है कि उस एक छुट्टी ने आपको कितनी और आजमाइशों में डाल देना है। जो काम आप नहीं करने पड़ते थे वो भी कहने उन्होंने करो, तुम्हारी छुट्टी है। एक छुट्टी छोड़कर आप कितने कामों से छूट जाते हैं आपको पता है? लेकिन ये इंसान का ख्याल होता है, और मैं कभी हार नहीं मानती। ये पता नहीं मेरे अंदर क्या बात है, मतलब मैं हमेशा अपने से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ। क्यों? इसलिए कि जब आखिरी हद हो जाएगी फिर तो मान नहीं है अपने आप को। हमने एक दिन तो हम सब ने बिस्तरों पे लेटना ही है ना, हम सब कब तक भागेंगे? आप सोचिए जरा, कितने दिन की जिंदगी है हमारे पास, कितना वक्त है, और कितने लोगों में अल्लाह ने हमें चुना। और अगर फौजी छुट्टी मांग लें उस दिन जिस दिन दुश्मन आए, और छुट्टी मांग लें उस वक्त जब फ्लडिंग हो रही हो, जब जलजला आया हो, आप तो मुश्किल हालात के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको क्यों इतनी छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं? छोटी छोटी बातें होती हैं ये, सिर्फ आप खुश होके काम करें ना घर का, तो एक घंटे में कर लेंगे। जोश हो बस आपको उस दिन कोई, कि आज रात मैंने कुछ करना है, या मेहमान आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, मैके से आ रहे हैं, या जिस दिन वैसे ही आप बड़े खुश हैं उस दिन देखिए घर का काम। और आम दिनों में आप देखिए अपनी स्पीड तो देखें कदम उठाने की। मैं किसी को आप में से देख रही थी अबाया उतारते हुए, तो मैंने पूरा उनको ऑब्जर्व किया, इतने प्रेम से प्रीत से उन्होंने कोट उतारा, स्लीके से हैंगर पे डाला, फिर अबाया कोट उतारा, फिर स्कार्फ उतारा, फिर कम से कम 5 मिनट वो वार्डरोब में थी, तो मैं उनको देख रही थी ऑफिस से ना, तो मैं सोची थी इसी स्पीड से घर के भी तो काम करती होंगी ना, है सोचने की बात है ना। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, हम बार बार नहीं रहेंगे, यकीन करें हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है। क्यामत के दिन हमें हसरत आएगी कि लौ ला अखरतनी इला अजलिन करीब, मौत के वक्त हसरत आएगी। हदीस में आता है कि जन्नती को जन्नत में किसी चीज का अफसोस नहीं होगा सिवाय उन लम्हों के जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गए। एक काम करके देखे खुद से, एक हफ्ता पूरा ले आज से अगले वीक तक, घर का काम जोश के साथ करें और घड़ी देख कर करें। हमारे अंदर जोश नहीं होता, हम सोच फ्रिज भी ऐसे खोलते हैं क्या पकाऊं, अक्सर सोचती हूँ अगर ऊपर कोई वीडियो बन रही हो हमारी और कोई कैमरा खो चल रहा, इसको क्या करूं, इधर देखा इसको रखा नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमारे काम करने के अंदाज में बड़ी नजाकत है। मेरी ट्रेन छूट गई है, कई इश्तेहार लगाए फिरने वाले, कामयाबी से मफरूर इश्तेहारी लोगों से कोई पूछे कि ट्रेन छूटने का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने से इन्हें आज तक कोई फ़ायदा हुआ? आप इल्ज़ाम घर के छोटे बच्चे को दे दें, अक्सर औरतें सबसे छोटे बच्चे का नाम ले लेती हैं, ये बड़े काम बिगाड़ता है, मैं ठीक करती हूँ ये खराब करता है। तो कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। वो यक जुबान होकर कहेंगे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रेन छूट जाने के इल्ज़ाम की जद में कोई भी आए, कामयाबी और खुशहाली की बारिश की जद में इल्ज़ाम तराश कभी नहीं आएगा। क्या ट्रेन छूट जाने के बाद झगड़े में उलझे हुए, मुंह पर अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए आग बगोला लोगों को आपने देखा है? कई बार ये लोग इतनी देर तक इतने हमाक से गुस्सा फरोशी और इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि इन्हें यह एहसास नहीं रहता कि साथ वाले प्लेटफॉर्म पर इन्हीं की तरह के गाड़ी छूट जाने के बाद जरा संभलने वालों को अपने साथ ले जा चुकी होती है। क्या समझ आई? कि ट्रेन तो भी छुट्टी थी, आप शिकवे कर रहे हैं, आपके साथ जिनकी छुट्टी थी वो उससे अगली ट्रेन लेके जा चुके हैं और आप खड़े शिकवे कर रहे हैं। क्या पता चला कि नाकामियों का शिकवा करना या दूसरों के कंधे पे तलवार रखने की बजाय आप मौका देखिए कि अगली ट्रेन कब आएगी और आप इंशाल्लाह उसको ना छोड़ें, ये अगली खैर की बात होगी। लेकिन क्या गाड़ी छूट जाएगी तो जीना छोड़ देंगे, ये खुद से पूछिए। आगे बढ़ना छोड़ देंगे, अपने ख्वाबों का ताकुब छोड़ देंगे, अपने प्यारों को कमतर जिंदगी के आसरे छोड़ देंगे, सर उठा के जीना छोड़ देंगे। गाड़ी छूट जाए तो क्या वाकई कुछ नहीं बचता? क्या जिंदगी को खैर बात कह देना दुरुस्त फैसला होगा, यानी नाकामी की वजह से अब अपनी जान ही ले लेना? क्या ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाना सही लाहे अमल होगा? क्या सर झुका के जीते रहना आपके लिए जायज हो जाएगा? बहानेबाज और इल्जाम तराश लोगों के लिए सब जायज है, वो अपने बहानों के दिफा में आज तक लड़ते रहेंगे, वो ट्रेन छूट जाने का सोग उम्र भर मनाते रहेंगे, ताहम अगर वो सोग से फारग हो जाएं तो ट्रेन छूट जाने के बाद भी इम्कानात के खुलते हुए दरवाजों को अपना मुंतजर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है और कोई चांस आखिरी चांस नहीं होता। ट्रेन छूट जाने के सोग को उम्र भर का रोग मत बनाइए, इसको लिख लें। ट्रेन छूट जाने के सोग को उम्र भर का रोग मत बनाइए, सोग से निकलिए, जल्दी निकलिए, अभी निकलिए, अजम के साथ निकलिए, उम्मीद के साथ निकलिए। मुझे पता है कि ट्रेन छूट जाने का दुख क्या होता है, मुझे पता है कि दीवार के साथ लग जाना किसे कहते हैं, मुझे पता है कि मायूसी के अंधेरों से निकलकर खुद को एक और कोशिश गोया एक और नाकामी के लिए तैयार करना कितना कठिन होता है। मैं हर बार अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद इल्ज़ाम तराश बनता रहा, यानी दूसरों पर इल्ज़ाम देता रहा, फ़ायदा कुछ ना हुआ। खुशहाली की ट्रेन, कामयाबी की ट्रेन, सेहत और तंदरुस्ती की ट्रेन, उम्मीदों की ट्रेन, अल्लाह से राब्ते की ट्रेन, रिश्तों की ट्रेन, दोस्ती की ट्रेन, मोहब्बत की ट्रेन, यानी हर एक इंसान की ज़िंदगी की मुख्तलिफ ट्रेनें होती हैं। किसी की सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, कोई कामयाबियों से दूर है, किसी के रिश्तेदार उससे खुश नहीं हैं, किसी की मोहब्बतें उससे रूठी हुई दिखती हैं, लेकिन ये होता है। तो फिर मैं इसके बावजूद आज यहाँ कैसे पहुँच गया? सिर्फ इस सोच के खिलाफ बगावने से कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यानी मैंने और आपने अपने अंदर से जिस सोच को निकालना है ना, वो ये, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ट्रेन छूटने के बाद इल्ज़ाम तराशी की बजाय जब मैंने पहली बार खुद से पूछा कि और क्या हो सकता है, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं इल्ज़ाम तराश से मौका तराश बन गया। ये लिखिए, इल्ज़ाम तराशी की बजाय मौका तराशी कीजिए, मौके बनाइए, यानी खुद मौके बना लीजिए। मुझे मौका शनास बनने के गुर भी आ गए, मैं बहानेबाजी से जिम्मेदारी के सफर पे निकल खड़ा हुआ। ख्वाबों की कुर्बानी की बजाय ख्वाबों की खातिर कुर्बानी की राह अख्तियार की, यानी ख्वाब नहीं कुर्बान करने बल्कि ख्वाबों की खातिर कुर्बानी करनी है। रास्ते खुद ब खुद खुल गए और फिर खुलते ही चले गए। अब सवाल पैदा होता है कि किसी की ट्रेन छूट जाए तो इसके बाद वो क्या करे? गाड़ी छूट जाने के बाद क्या करना चाहिए? गाड़ी छूट गई है तो रोने धोने की बजाय पहली बात इस गाड़ी का पीछा करें। गाड़ी का ताकुब गोया के ख्वाबों का ताकुब है, अच्छी जिंदगी का ताकुब है, फिर पीछे हटने का, रुक जाने का, मुड़ आने का और भाग जाने का इम्कान बीच में आ कहां से गया? अगली गाड़ी के आने का इंतजार करें, यह दूसरी चीज है। गाड़ी ही तो छूटी है, मंजिल तो नहीं रूठी, ये भी नोट कीजिए। मंजिल तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, एक गाड़ी नहीं मिली अगली ले ले। बेचारी गाड़ी को इतनी अहमियत ही क्यों दे रहे हैं? गाड़ी की बजाय नजरें हदफ पे, मंजिल पे और ख्वाबों पे क्यों नहीं रखते? गाड़ी छूट गई है का मतलब मंजिल मुंह मोड़ गई है तो नहीं, यानी मंजिल तो मौजूद है, अगली गाड़ी के इंतजार का क्या मतलब है? गलती, कोताही या पहली गाड़ी छूट जाने की वजूहात को ना दोहराने का अहद करना। यानी दोबारा बोलती हूँ, क्या मतलब है अगली गाड़ी का इंतजार करना? गलतियों, कोताहियों और पहली गाड़ी की छूटने की वजूहात को ना दोहराने का अहद करना, यानी अपनी आदतें बदल लीजिए। गाड़ी छुट्टी क्यों, लेट निकले थे जल्दी निकलिए, सुस्त है चुस्त हो जाएं। इंतजार में रहने का मतलब दरअसल तैयार रहना है। खाली इंतजार से अगली गाड़ी का टिकट थोड़ी मिल जाएगा। आपको इंतजार सो के नहीं करना, गपशप लगा के नहीं करना, प्लेटफॉर्म या स्टॉप छोड़ के नहीं करना, खुद को तैयार करना और तैयार रखना ही अगली गाड़ी पकड़ने की जमानत है। वरना क्या पता आप तैयार ना हो और ये ट्रेन भी छूट जाए। कितनी बार आपने ट्रेन छूट जाने के बाद बस स्टैंड का रुख किया, यदि ट्रेन नहीं मिली तो बस ले लीजिए। मौका तराश लोग ट्रेन छूट जाने के बाद बस पकड़ के अगले स्टेशन पे दोबारा ट्रेन में सवार हो जाते हैं। कई बार तो ट्रेन के अगले स्टेशन पर आने से पहले ही वहाँ इंतज़ार फरमा रहे होते हैं। बस छूटी है तो ट्रेन पकड़ लेंगे, ट्रेन छूटी है तो बस पकड़ लेंगे। एक सवारी पर ज़्यादा भरोसा मत करें, कोई भी सवारी पकड़ लें। मुझे तो बस इतना पता है कि मंजिल पे पहुंचना आपके लिए जितना ज़रूरी होगा, इम्कानात के इतने ही दर आप ही आप खुलते जाएंगे। क्या आप किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जिसने मंजिल पे पहुंचने का ऐसा पक्का इरादा किया कि बसों ट्रेनों की हड़ताल के बावजूद वो किसी ट्रक, ट्रॉले, कंटेनर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, चिंगची या साइकिल पर बैठकर अपनी मनपसंद जगह पर पहुंच गया? क्या आपने खुद कभी ऐसा करके नहीं दिखाया? यानी जिनको पहुंचना होता है अल्टरनेट ले लेते हैं। मंजिल पर पहुंचने का आजम जितना मजबूत होगा, मेरी गाड़ी छूट गई है की शिकायत इतनी कमजोर होगी। अब आखिरी लफ्ज हैं क्या कि ख्वाबों की पुकार पर लब्बाई कहने वाले तो गाड़ियों बसों का इंतजार ही नहीं करते, वो तो बस निकल खड़े होते हैं। क्या आपने पैदल हज करने वालों के बारे में कभी नहीं सुना? इन्हें कौन सी चीज खींच लाती है? आबला पाई यानी पाँव में आबले छाले पड़े होते हैं। आबला पाई के बावजूद लोग अपने हदफ की तरफ कैसे बढ़ते रहते हैं, इसकी इससे बेहतर मिसाल कहाँ मिलेगी? क्या आपने खुद कभी शिकायतबाजी की बजाय पैदल मार्च नहीं किया? खड़े रहने की निस्बत चलते रहना कहीं बेहतर है, चलने वालों के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। गाड़ी छूट जाने पर रोने की बजाय आप मुखालिफ सिमत में आने वाली गाड़ी पर भी बैठ सकते हैं। अपने कॉलेज से फारुखाबाद जाने के लिए हमें कभी में या छत पे भी सीट नहीं मिलती थी, हम फारुखाबाद की बजाय शेखपुरा जाने वाली बस में बैठकर इस जगह पहुंच जाते जहां से फारुखाबाद जाने वाली वैगने बसें चलती थी। 10 में से 9 दफा हमें छत पे तो जरूर सीट मिल ही जाती थी। कई बार मंजिल पे पहुंचने के लिए एक आध कदम पीछे भी हटना पड़ता है, लेकिन पीछे हटने का बस पाई नहीं होना चाहिए। 2-4 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाने का मंजर किस नहीं देखा? वक्ती तरफ इंसान थोड़ा सा पीछे भी होता है ना, तो एक नई ताकत के साथ आगे आता है। गाड़ी छूट गई है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो गाड़ी खुद बना लें, अपनी गाड़ी खुद बना लें, अपनी सिमत बदल लें, मंजिल बदल लें, हदफ बदल लें, रास्ता बदल लें, लाहे अमल यानी तरीका कार बदल लें। बस एक चीज ना बदलें, आप बताएं वो क्या? सर उठा के जीने का आजम ना बदलें कि मैंने कुछ करना है। जब तक आपके अंदर सर उठा के जीने का आजम है, आरजू जिंदा है, जज्बा है, आप बाहिम्मत हैं, आप मुखलिस हैं, जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो किसे खबर के मंजिल खुद चल के आपके पांव पड़ जाए, रास्ते खुद ब खुद आपके कदमों तले बिछते चले जाएं। किसके बसों, ट्रेनों, गदा गाड़ियों, चिंगची रिक्शों और आबला पांव से कतई नजर, मंजिल की तरफ रवानदवा रहने वालों पर कब हवाई जहाजों के बिजनेस क्लास के दरवाजे खुल जाएं? दिनों में तय होने वाली मुसाफतें मिनटों में तय हो जाएं। एक से दूसरे स्टॉप तक जाने से घबराने वाले दुनिया भर की सैरों के मजे लूटें। दुनिया के बेहतरीन हवाई जहाज और इनकी बेहतरीन सीटें, पायलट और स्टाफ इनका इस्तकबाल करें। बेहतरीन होटलों के एग्जीक्यूटिव फ्लोर के आलीशान इनकी आरामगाह बने। दुनिया के बेहतरीन बीच, रिजॉर्ट्स, आइलैंड और सैरगाहें इनके लिए चश्मबरा हों। اور کب خوابوں میں بسنے والی زندگی ان کے لیے حقیقت کا روپ دھارے سامنے آن کھڑی ہو. سچ ہے نا, کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ ان کو وہ بھی دے دیتا ہے. آپ تو چھوٹی چیز سوچتے ہیں, اللہ تو بہت بڑی دے دیتا ہے. پکنک اسپاٹ, جزیرے, سیرگاہیں, وادیاں, ساحل, پہاڑ, جنگل, میوزیم, سڑکیں, تاریخی مقامات, پلازے, عمارتیں, ریسٹورانٹ, جھیلیں, آبشاریں, دریا اور پرفضا مقامات دیکھنے کی آپ کی آرزو بھی میری طرح پوری ہو سکتی ہے. بس اتنا کیجئے, کبھی گاڑی چھوٹ جانے کی شکایت نہ کیجئے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ کبھی آپ کی گاڑی نہیں چھوٹے گی. ہاں, اس بات کی گارنٹی ہے کہ گاڑی چھوٹنے کے بعد بھی امکانات کی ایک پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. لیکن آپ وہیں کھڑے مت رہیے, آگے بڑھیے حد و حساب امکانات سے. اسباب کے ذریعے دوستی کیجئے, الزام تراشی کی بجائے موقع تراشی کا فن سیکھیے, انتظار کی بجائے خود کو تیار کیجئے. یاد رکھیے, پوری دنیا انتظار کر رہی ہے آپ کے سر اٹھا کے جینے کا. ان لوگوں کے انتظار کو طویل مت کیجئے. آپ کے سر اٹھا کے جینے سے کتنے لوگوں کا سر اٹھ جائے گا, کچھ کا فخر سے اور بہت سوں کا ان ثمرات کی وجہ سے جو آپ کے باعث ان تک پہنچیں گے. پھر گرا دیجئے بے سود بہانوں کی دیواریں اور نکل کھڑے ہوئیے اپنے خوابوں کی جستجو میں. رہیے, رکھ دیجئے آج پہلا قدم سر اٹھا کے جینے کی راہ پہ. تہیا کر لیجئے کہ نہ صرف آپ نے دنیا کو سر اٹھا کے جی کے دکھانا ہے, بلکہ دنیا کو سر اٹھا کے جینا بھی سکھانا ہے. دنیا آپ کی منتظر ہے, تو پھر بتا دیجئے دنیا کو کہ سر اٹھا کے کیسے جیا جاتا ہے. اب آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا فائدہ ہوا آپ کو آج کی بات سننے کا, کوئی پریکٹیکل چیز, کوئی سوچ. ہاتھ کھڑا کر لیں.
تو سنتے ہوئے بالکل ڈر رہی تھی کہ جب بھی سنتے ہیں نا کامیابی, تو ایسے آتا ہے کہ خوبصورت راستہ. تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کامیابی کا راستہ خوبصورت راستہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے لوگ بھی پھر خوبصورت ہی ہوں گے. اور میں یہ ٹیلی کہہ رہی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط المستقیم بھی کامیابی مفلحون کامیابی کا ہی راستہ ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں. یہ ٹپس ان شاء اللہ ساری جو آپ لوگوں نے شیئر کیا وہ بھی اپنے لیے لی ہے.
بالکل, جب لفظ کامیاب بولتی ہوں پتہ نہیں کیوں میرے وہ لاشعور میں چپکا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور. وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں, وہ کامیاب تھے تو ہم کیوں نہیں, کہ جن کا ذکر اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا اور جن کے لیے اتنی خوشخبری ہیں قرآن کی, اتنی آیتیں ابراہیم کے لیے. سوچئے ذرا ان کی زندگیاں, ان کے ریسورسز, ان کے پاس کیا تھا, اور آج ہم اور آپ نیم سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں. تو آج کے وقت کبھی بھی شکوا نہیں کرنا اپنے حالات کا, اپنی مجبوریوں کا. مجبور لوگ پتہ نہیں اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے, مجھے تو نہیں اچھے لگتے. لوگ سوچتے ہیں مجبوروں پہ ترس آتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے پتہ نہیں کیوں. اسٹرانگ بنے, آپ ایسے بنے کہ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر لگے کہ واہ یہ کامیاب لوگ ہیں. دبے پیسے جبے لوگ تو غلام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر عاجزی بھی ڈالے اور ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی سے کچھ ایسا بڑا کام کروا کر جائیں کہ بعد میں لوگ ہمیں دعائیں دیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.